सारे गुण इसके बीच के माँ मानो विधाता ने जाकर रख दिए हैं। ये देखकर अपने मन ही मन के माँ उसको पति ये तो मान लिया। घर के ऊपर आई उस समय के माँ नारद मुनि वहां आए हुए थे। नारद जी उस लड़की को देख करके उसके पिता से कहा कि भी लड़की तो सियानी हो गई तो इसका विवाह करना चाहिए। इसलिए महाराज वही कोशिश हो रही है इसके लायक कोई लड़का खोजने के लिए या खुद ही गई थी। अभी आप घूम करके आई है, आज ही आई आज ही। तो महाराज मैं आपसे पूछूं कि ज्युमन सेन राजा का लड़का जो सत्यवान है वो कैसा गुणी है? आप तो महात्मा हो, सब जगह घूमते रहते हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है तो आप बतलाओ। तो नारद जी उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे कि राजन मैं क्या कहूं, वो सत्यवादी है, माता पिता का भक्त है, सदाचारी है, ईश्वर का भक्त है और दुनिया में जितने जो गुण है क्षमा शांति समता संतोष सरलता गुरु सेवा माता पिता की सेवा जितने जो उत्तम गुण है सारे के सारे गुण उस सत्यवान के बीच के माँ है। तो बोले महाराज उसके मुंह कोई औगुण है वो भी बतलाओ। औगुण में क्या बतलाऊ, उसमें औगुण तो कोई है ही नहीं, उसमें तो एक ही औगुण है। वह औगुण यह है कि बड़ा हरि औगुण है जिससे सारे गुण छिप जाएंगे। महाराज ऐसा क्या औगुण है कि वो आज के एक साल के बाद ठीक आज के दिन ही उसकी मृत्यु है, तो मर जाएगा तो सारे गुण उसके साथ ही चले जाएंगे। राजा ने देखा कि ये तो बहुत ही खराब बात। राजा ने आपकी बेटी से कहा, बेटी सावित्री नारद जी की बात तुमने सुनी, तू जिसको पति बनाना चाहती है वो लड़का तो बहुत बढ़िया है किंतु साल भर के बाद वो मर जाएगा, तो इसीलिए अब और तू दूसरे लड़के की खोज कर। तो लड़की कहती कि पिताजी शास्त्रों में बताया है कि भाइयों का बंटवारा एक ही बार होता है, भाई भाई बार बार में अलग अलग नहीं होते, उनका बंटवारा एक ही बार होता है। असत्य जो पुरुष होते हैं वे किसी के प्रति आज्ञा एक ही बार करते हैं, ये नहीं कि उसको बार बार करे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसी आज्ञा ने दोबारा तीन बार नहीं कहते कि भाई तेरे यो काम कर यो काम कर यो काम कर, बस एक बार कह दी, वो करे तो करे न करे तो न करे। और कन्या की शादी एक ही बार होती है, वो बार बार नहीं होती। तो मैं उसको अपना पति बना चुकी तो अब मैं दूसरा पति नहीं बनाऊंगी, मेरे तकदीर में जो बात होगी सो होगी। अब एक प्रकार से मैं उसको अपना पति बना चुकी, मैं तो उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, वो मेरा पति बन चुका, मेरे दिल का मालिक हो चुका, जो मेरे तकदीर में बात होगी सो होगी। तो पिता ने देखा कि समझदार लड़की है और वो विचार करके कहती है तो ठीक है जल्दी विवाह कर दो। तो पुरोहितों को साथ में लेकर के बहुत सा धन साथ में लेकर के और खाने पीने का होम की सामग्री सब सामग्री लेकर के पिता वहां से विदा हो गया। एक प्रकार से वहां पहुंचा कि जहां राजा ज्युमन सेन और सत्यवान थे वहां जाकर के अर्ज करी कि आपका जो लड़का है उसके साथ मैं मेरी लड़की की शादी करना चाहता हूं। बोले महाराज आप राजा धीराज है, कोई समय के बीच में मैं भी था किंतु मैं आज भिखारी हो गया, मेरा राज छीना गया, मैं राज से च्युत हो गया और वन में रह करके कंदमूल खाकर के हमारे शरीर को निर्भाव में लोग करा, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी लड़की राजा कहने की यहां तक नहीं पाएगी, तो आप सोच लो। और उन्हीं लड़की के आग्रह से जो काम हुआ है आज आप कोई विचार मत करो। बोलो कि हाने के हिसाब से तो जब मैं राजा था उस वक्त में मैं भी ये चाहता था कि आप जैसे पुरुषों के साथ में हमारा संबंध हुए, किंतु आज मैं क्या कह सकूं, मतलब कोई बात नहीं। तो जबरदस्ती एक प्रकार से उनके आग्रह, अपना आग्रह करके लड़की को पिता अपनी लड़की की शादी कर दी, और करके लड़की ने वहां ही छोड़ दी कि एक साल तो आराम से रहे, बाद में तो विधवा होगी और लड़की बैठे रहने लगी। तो लड़की जो अपने राज की पोशाक थी वो सब उतार करके रखती, अगर उसके सासु ससुर पति जिस प्रकार से मुनियों का वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वन में रहते हैं, मुनि के बीच से रहते हैं, और उस मुनियों का पद अपने पद गाते हैं, वैसे अपना जीवन बिताते हैं, और उनका मुनियों का खाने योग्य जो भोजन है कोई भोजन करना, तो वो भी वैसे ही रहने लगी, सबकी सेवा करने लगी, अपना जीवन एकदम सेवा बिताने लगी। ये देख उसकी सासू भी उस पर बहुत खुश रहे, ससुर भी रहे, पति भी रहे, ऐसे सेवा करते करते साल भर बीत गई। और जो कुछ गहना कपड़ा अपने फिर से लाई थी वो अपने सासू के हवाले कर दिया, बोले मैं कोई आवश्यकता नहीं गहना पहनने की, बढ़िया कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं। एक साल बीत गई तब उसने सोचा कि भाई अब आज तेरे पति की मृत्यु है, तो पति है तो कुम्हारा लेकर के दादी आपने फल पुष्प के वास्ते लेकर के चलने ले गया, वो वन में जाकर के रोज पुष्प लिया था देवताओं की पूजा के लिए, और फल लिया था भोजन के लिए, कंद मूल ये फल ये वन में से लिया था, और लकड़ी काट करके लिया था घर के माँ समझो की जलाने के लिए। तो श्री हाथ जो बोली मैं भी आज आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तू भूखी है, उपवास करे तो कर, तो आज तुम तो नहीं जाकर के आज भोजन कर लेने के बाद कल जाना। बोले स्वामी मेरे भोजन भूख लेने को बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, और आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ में चलूं। वो मन में सोचने लगी आज तो मर ही जाएंगे, कल किसके साथ जाएगी, पर नहीं मैं तो आज ही आपके साथ में जाना चाहूं, मैंने हुक्म करना चाहिए। उन्होंने विनय करने लगी, उसने कहा कि मेरी तरफ से तो मैं आर्डर दे देता हूं तू जा सकती है, किंतु मैं तो खुद पराधीन हूं, माता पिता के आधीन हूं, मैं माता पिता की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता, तो तू मेरे साथ में चलना चाहे तो माता पिता को हुक्म ले, फिर मैं तने ले जा सकती, ठीक है। वो माता पिता के चरणों में जाकर गिर गई, विलाप करने लगी, बोले क्या चाहती है, बोले आज मैं मेरे पति के साथ में जाना चाहूँ। बोले ये तुम भूखी है थक जाएगी, बोले नहीं मुझको हर्ष और प्रसन्नता जगह से बिल्कुल थकावट नहीं मानेगी। तो ससुर ने कहा कि देखो यह सावित्री आज तो कोई बात के लिए अर्ज करी नहीं, पर आज जो ये अर्ज कर रही है और आज ऐसे कर रही है तो अच्छा जाना दो, बोले तू जा सकती है। तो बड़ी चाल के साथ और उसके साथ में चली, जैसे लक्ष्मण जी की आज्ञा, लक्ष्मण जी माता की आज्ञा पाकर के भगवान राम के साथ वन में गए, इसलिए वह एक प्रकार से अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर के पति के साथ में वन में गई। वन में वहां जाने के ऊपर पति जो है तो अब प्रथम है तो काट काटने के वास्ते वृक्ष पर चढ़ा, और बस काटते काटते उसके माथे में दर्द आ गया, नीचे उतरा, बोले कि आज तो मेरा माथा मेरा सिर बहुत ही अपने तो दर्द करता है, इतनी पीड़ा जोर की हुई न मालूम करते हुए कैसे हुई। बोले कोई बात नहीं आप सो जाओ। वो पलाखी मार करके बैठ गई, पति को अपने गोद में सवार। थोड़ी देर के बाद के मां क्या देखती है कि अपने दाहिनी तरफ के बीच के मां एक काले रंग का पुरुष लाल कपड़ा पहने हुए है। पूछा कि महाराज आप कौन हो? बोले मैं जमराज। आप क्यों आए हो? कि तेरे पति के प्राणों को लेने के लिए इसकी आयु समाप्त हो। महाराज मैंने ये सुना कि आपके दूत आया करते। बोले हाँ मेरे दूत ही आया करते। हमारा जम के दूत ही आया करते हैं, तो फिर आप क्यों आए? बोले मेरे दूत आए थे कि तू पति बढ़ता है, तेरी गोद के मां सुत्या हुआ है, उनकी सामर्थ्य हुए प्राण निकाल करके ले जाए, इसलिए मैं खुद आया। ठीक है, उसके प्राणों को निकाल दिया और लेकर के चल दिए। वो देखते तो पति के देह में प्राण नहीं है, तो उस शरीर को वहीं एक प्रकार से भूमि में सुहा करके और उसके पीछे सो गई यमराज। यमराज ने पीछे देखा तो कोई स्त्री आ रही है। पूछा तू कौन है? कि महाराज जिसको आप ले जा रहे हो उसकी मैं धर्म पत्नी हूँ। कहाँ जाओगी? कि जहाँ मेरा पति जाएगा। बोले हे सावित्री, हमारे लोक में तो मनुष्य मर के ही जाता है, जिंदा बन नहीं जा सकता। प्रभु आपकी कृपा है, मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मेरा पति जाएगा मैं इसी शरीर से मेरे पति के लोक को जाऊंगी, मेरे को रोक नहीं सकता। जब महाराज ने ध्यान लगा कर देखा, बोले कि वो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो इस शरीर से अपने पति के लोक को जा सके। बोले सावित्री धन्य तुम्हारे को, मैं तुम्हारे व्रत को देख करके खुश हो गया। तेरे पति को तो नहीं दूंगा, और जो तेरी इच्छा हो तू वरदान मांग। मेरे प्रभु जब आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो मेरी सास से मेरा ससुर दोनों आंखों से अंधे हैं और वृद्ध हैं और निर्बल हैं, तो उनको आप नेत्र दीजिए। बोले तथा प्रसन्न हो जाएंगे। फिर भी सावित्री में के पीछे जाने लगी। बोले हे सावित्री, फिर तुम मेरा पिता क्यों नहीं छोड़ती है? बोले महाराज आप महापुरुष हैं, और महापुरुषों का संग हो जाए तो क्या उनका पिता छोड़ना चाहिए? उनसे क्या इतने लाभ उठाना चाहिए? अच्छा, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया। इस प्रकार की बातें मुझको आज तक किससे नहीं हुई। और तेरी इच्छा तो तू वरदान मांग ले, तुम्हारे को दूसरा वरदान देता हूँ। हमारा दूसरा वरदान देते हो तो मेरे साथ ससुर का जो राज छीन लिया गया था मेरे ससुर का शत्रु ने, वो वापस मिल जाए। बोले जा मिल जाए। फिर भी पिछा नहीं छोड़ा। फिर यमराज ने कहा कि तेरी इच्छा हो तो तीसरा वरदान मांग ले, क्योंकि मेरा तू पीछा छोड़। बोले तीसरा वरदान मैं ये मांगती हूँ कि मेरे पिता के कोई संतान, मैं लड़की हूँ, कोई लड़का नहीं है, तो जब आप मिल गए तो फिर कम क्यों? 100 पुत्र मेरे पिता के हो गए। बोले तथा तो हो जाएंगे। सावित्री ने देखा कि एक प्रकार से जब 100 पुत्र मांग लिए तो आयु तो उसके साथ में आप ही मिल जाएंगी। लड़के में कोई आवश्यक नहीं, 100 पुत्र को एक दिन में तुलते नहीं। तो महाराज आप कितनी प्रसन्नता है, आप महात्मा पुरुष और आपके संग हो गया, आपके संग से बड़ा भारी लाभ होना चाहिए। इस प्रकार से उसको बातों से खुश करके बिगवा लिया और बोले महाराज मेरे भी 100 पुत्र हो, बोले तेरे भी हो जाएंगे। एक एक करके चलने लगे तो फिर भी जा गया। बोले सावित्री एक प्रकार से तुम्हारे को 4 वरदान दे दिए, फिर तो तुम्हारे को संतोष करना चाहिए, फिर क्यों ने पीछा छोड़ती है? महाराज हम तुम्हें जो मैंने वरदान दिया, क्या वरदान दिया थोड़ा आप भी हंस करके देख। आपने ये वरदान दिया कि तेरे 100 पुत्र हो जाएंगे, तो मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, मेरे पुत्र कैसे हो जाएंगे? सब हो जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारे पति को मैं छोड़ देता हूँ और 400 वर्ष की आयु डाल देता हूँ, 400 वर्ष तक और ये जीता रहेगा, तुम्हारे 100 पुत्र कौन? ठीक है, लौट कर वापिस आई और झट उसी अपना पति को गोद में सुहा लिया। पति जैसे सुत्या हुआ उठे ऐसे उठे, बोले कि आज मैं एक प्रकार से थी एक स्वप्न के बीच के वहां एक अद्भुत ऐसी घटना देखी। क्या तू जानती है? बोले हाँ सब जानती हूँ। उसके लिए वो स्वप्न के बाबू था। बोले तुम वो तुम बता। बोले महाराज सायंकाल का वक्त हो गया, माता पिता जीते होंगे, ऊर्जनों से आज आज समय अधिक हो गया, तो चलना मैं वहां जाकर पता ठीक है। वहां से रोना होगी, वो थक गया था, सिर में दर्द था, तो सावित्री का खोआ पकड़ के आस्ते आस्ते बन से थी वो आने लगा। इधर में उनकी आंखें खुल गई, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी आंखें कैसे खुल गई। और अब आश्रम में घूम घूम कर देखने लगी, आज हमारी बेटे की बहू और लड़का दोनों क्यों नहीं आए? लड़का अकेला जाता था तो जल्दी आ जाया करता था, दोनों गए तो विलंब हो गया। ऋषियों के आश्रम में गए, गौतम आदि ऋषियों के आश्रम में जाकर पूछा कि महाराज बड़ी चिंता की बात है, रात्रि का वक्त हो गया, अभी तक हमारा बेटा और बेटे की भूख नहीं आई। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, बोले कि अभी खुश है, कोई बात की आप चिंता मत करो, अब आ ही रहे, जल्दी भोजन हुआ। इस प्रकार से बात करते करते चित्र हुआ आ पहुंचे ऋषियों के आश्रम। तो गौतम जी एक प्रकार से पूछा गया कि आज देरी क्यों हुई? तो गौतम जी सावित्री से कहा कि सावित्री देरी होने का जो कार्य है तू ही बता, तू सब बात जानती है। तो सावित्री से आज इस अंत तक सारी बात सावित्री ने बतला, ये घटना हुई। बस दूसरे दिन समझो कि ऐसी बात हुई कि वो पहला का जो राजा है उसे तो उनके जो मंत्री लोग है और दूसरे राजा लोगों से लड़ाई होगी, उसकी हार होगी, वो भाग गया। और मंत्री लोग है गांव के पंच बड़े बड़े आदमी वहां बन में आकर के जुम्मन सिंह राजा से कहने लगे, महाराज वो आपका राज आप ही करिए और एक प्रकार से सब आपको हम चाहते हैं, आपके नेत्री भी आ गई, आपके वहां बल भी आ गया और आपका जैसा राज था वैसा दूसरे के लिए नहीं हुआ। तो मैंने आग्रह करके ले गई, राज भी मिल गया और समय के ऊपर उनके 100 लड़के भी हुए। तो कहना का यह अभिप्राय कि पातिव्रत धर्म के पालन करने से सावित्री ने यमराज को भी जीत लिया। तो ऐसी ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में महाभारत में और समझो की आती है कि पातिव्रत धर्म के पालन करने से की जो अपनी इच्छा करते है वही काम उसका सिद्ध हो जाता है। दमयंती ने पातिव्रत धर्म का पालन करके समझो की अपने पर कुदृष्टि करने वाले उसे दाद को भस्म कर दिया था। और गांधारी जो ऐसा अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी भगवान कृष्ण को साथ देकर के उनके कुल का नाश कर दिया था। ये गांधारी की कथा महाभारत की स्त्री पर्व में आती है। सावित्री की कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। इस प्रकार से थी ये कथा जो है तो महाभारत के वहां आती है। दमयंती की जो कथा है यह भी महाभारत के वन पर्व में आती है। और भी बहुत सी स्त्रियां हुई, सुभा नाम की जो स्त्री है उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया जिससे वो पति के सहित अपने परमात्मा के धाम को चली गई। या कि पद्म पुराण के बीच के मत आती है। और सुनो कि शांडिली नाम की जो कोडी के श्रीपति वर्ता हुई थी वो अपने पति के सहित उत्तम गति को चली गई। या कैसा मार्कंडेय पुराण के वहां से आती है। और शुक्ला नाम की कर्कट वंश की स्त्री हुई, उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके प्रभाव से उसके घर के ऊपर आए। उसका पति भी बड़ा धर्मात्मा था, पति ने कहा कि आप सब जो हमारे घर पर पधारे हैं तो मेरी स्त्री जो पतिव्रता है इसके प्रभाव से या मेरे धार्मिक पन के प्रभाव से नहीं, बोले तेरे धार्मिक पन के प्रभाव से नहीं, तेरी यत्नी के प्रभाव से हम लोग सब आए हैं। तो फिर वे सब उत्तम गति हुए, पति से वर्ती आप लोग उत्तम गति हुई, या कथा बलम पुराण में आती। इसलिए से शास्त्रों के बीच के वहां पातिवत धर्म की बातें बहुत आती है, बहुत कथा आती। तो अतिरिक्ति के लिए सबसे बढ़कर पातिवत धर्म है मनोसमृति की पांचवी और नौवे अध्याय के वहां पातिवत धर्म का बड़ा विस्तार आता है। और पातिवत धर्म की कथा जो है, समझो कि द्रौपदी ने बल पर्व के बीच में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की असली जो है इसके प्रति कही है। यह कथा बन पर्व में आती, बन पर्व के मां श्री कृष्ण जी बाणों से मिलने के लिए गए, तो सत्यभामा जी पति के साथ में गई थी, तो द्रौपदी से मिली है। और द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तेरे पांच पति होकर के तो पांचों पतियों को अपने बस में करके रखती है, ये कौन सी विद्या है? ये कोई तुम जादू टोना जानती है, या एक प्रकार से कोई औषध जानती है, या कोई तुम जंतर मंतर अपने पतियों पर करके कि उनको बस में किया है? तो द्रौपदी ने उसका यह उत्तर दिया कि हे सत्यभामे, तुम भगवान कृष्णचंद्र की स्त्री होकर के और ऐसी बातें करती है जैसे कोई नीच स्त्री करती हो। क्या कोई स्त्री का यह धर्म है कि पति पर टूणा करना, कोई जादू करना, दुआई खिलाकर अपना वश में करना, या उसके ऊपर ऐसा करना? ये तो नीच स्त्रियों का काम होता है। तेरे जैसी स्त्री ऐसी बात करे? अब तू ये कह रहे कि तुम्हारे पति तुम्हारे अनुकूल कैसे है, तो मैं तुम्हारे को बतलाती हूँ कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। ये जो है, जो कुछ मुझ में है, वो पति सेवा का प्रभाव है। जब मैं राज में रहती थी, तो उस समय मैं 84,000 समझो कि ऋषि कुमार मेरे यहाँ भोजन करते थे, स्नातक और सब जितने जो गुवास्त हैं, गुवारी हैं, नौकर चाकर है, सबको भोजन करा करके, अतिथियों को भोजन करा करके और पतियों को भोजन करा करके, बाद में मैं भोजन करा करते थे। और मेरे नीचे 10,000 समझो कि दासियां थी सेवा करने वाली, मैं अकेली इतने पुरुषों कैसे भोजन कराऊं? तो उन 10,000 दासियों पर मैं शासन करते हैं। और घर का जो आय व्यय का हिसाब है, रोकड़ का जो हिसाब है, वो मेरी जिम्मेवारी में रहता था कि कितने आपने आय होती है, बस मेरे कितना तो खर्च होता है, सारा परपट में रखती हूँ। और मेरे पतियों को मैं मौका देती थी जिसे वे अपना भजन ध्यान करके अपना आत्मा का कल्याण करे, आई हुई पुरुषों की समझो की सत्कार करे, अतिथि सेवा करे, ये काम उनके जिम्मे में रखा। और जब मेरे पति बाहर से आते तो मैं दुर्जय तक जागरूक कुमार खोल करके साथ में जाती, और जब वापिस जाते तो उनको पहुंचाने के वास्ते वहां जाया करती थी और उनके बैठने पर बैठती और सोने पर सोया करते थे। और आने पर उनका बड़ा सत्कार करती, हंसती ही बोलती थी, जिस तरह मेरे पति खुश हो इस प्रकार से मैं द्वार करती, अभी इसी प्रकार से मैं करूं यहाँ पर भी। यहाँ पर भी सब अतिथियों को भोजन कराती हूँ, फिर पतियों को उसके बाद में मैं भोजन करती हूँ। और एक प्रकार से मेरे पति जो है किसी दूसरे को भी काम उठा रहे तो मैं करती हूँ, इसी प्रकार से मैं करा करती थी। और तू भी यदि भगवान श्री कृष्ण जी को अपने अनुकूल बनाना चाहे तो तुम्हारा पति कोई दासी को पानी के लिए कहे, दास को पानी के लिए कहे, तो उसको धो करके और तुम ऐसो पानी दे और तुम उसकी सेवा कर। प्रातः काल में पति के सबसे पहला उठती हूँ तो तू अपने पति से सबसे पहला उठ और उठ करके बाद में सबके बाद के सोना और भोजन करने के बाद भोजन कर लूं, बैठने के बाद बैठ लूं, सोने के बाद सोनो, ये सब काम इस प्रकार से कर। तो पातिव्रत धर्म की शिक्षा द्रौपदी ने सत्य भावना को बड़े विस्तार के साथ किया। एक प्रकार से अलग पुस्तक भी क्षेत्रीय किताब पेश हुई, किन्तु खास एक प्रकार से यह कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। वन पर्व की कौन सी अध्याय है कि 233 की और 234 की अध्याय है, जो आपको एक प्रकार से झटका दल से मिल जाए, कोई देखना चाहे आजकल महाभारत लिखना देखना काम पड़े। तो इस प्रकार से समझो कि आपने पातिव्रत धर्म की बातें शास्त्रों में बहुत आती। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत काय वचन मन पति पद प्रेमा के लिए एक ही धर्म एक ही वर्ग एक ही नियम है कि मन से वाणी से शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना। एक ही अपने पांच जो व्रत है कुसुम के लिए उसके लिए अस्त्री के वास्ते एक ही प्रधानता बतलाई क्या कि ब्रह्मचर्य को पालन करना, पति के साथ दूसरे पुरुष को मुख भी नहीं देखना, ऐसा व्रत रखना। एक ही व्रत वास्ते व्रत एक ही नियम है कि पति ही को साक्षात ईश्वर के समान समझ करके जैसे भगवान को भक्ते और भगवान की भक्ति करे ऐसे पति की भक्ति करनी, जिसको कहते ईश्वर परिधान। पांच नियमों में पांच जो व्रत है पांच नियम बतलाए है, उन पांच व्रत यह है कि हंसा सतर से ब्रह्म से अपनी गिरा जमा, ये पांच यम है, ये पांच महाव्रत है कि किसी की हिंसा नहीं करनी, कभी किसी को कष्ट नहीं देना, एक असत्य वचन बोलना दो, और चोरी नहीं करना तीन, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चार, और संसार के भोगों का त्याग कर देना पांच। ये पांच सब के लिए है, पुरुषों के लिए और विधवाओं के लिए और पतिव्रता के लिए एक एक ही नियम पांच नियम। पांच नियम अपने लिए क्या बताया कि सो तुम दो तपस्वा गया इस पर नानी नियम ये पुरुषों के लिए पांच नियम बतलाए। मतलब बार भीतर हर वक्त पवित्र रहना और जो कुछ आगे के प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से उसी में संतोष करना, और भारी आपत्ति पड़ने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना, ये सब है। और पुस्तकों का वेदों का श्रुति स्मृतियों का स्वाध्याय करना और ईश्वर की भक्ति ईश्वर परिधान करना, ये पांच नियम है। किंतु अपने के वास्ते एक ही है कि जैसे ईश्वर परिधान ईश्वर की भक्ति ऐसे उसके लिए पति की भक्ति, पति को ईश्वर मान करके उसका जप ध्यान सेवा पूजा करना। एक ही उसके वास्ते नियम एक ही उसके वास्ते माने व्रत और एक ही उसके वास्ते धर्म, और मनुष्य के वास्ते 10 धर्म बतलाए। समाज मोहन सोच मंदिर निग्रह धीर विद्या सत्यमय क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण मनु जी ने मनु की छठे अध्याय में बतलाए। माने धीर रखना, आपत्ति भी पड़े कभी घबरावे नहीं, और कोई अपराध करते उसको माफ कर देना, भक्ति क्षमा, तम जो है अपने मन को बस में करके रखना, अष्टे जो है मन चोरी नहीं करना, भक्ति क्षमा दमो से सोच माने बाहर भीतर से पवित्रता से रहना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को बस में रखना, ही माने सात्विक बुद्धि बनानी, विद्या माने सात्विक विद्या, सत वचन बोलना, क्रोध नहीं करना, ये 10 बात अपने लिए है। अपने के लिए तो यही है कि अपने मन को संयम करके पति की सेवा करे, मन से वाणी से शरीर, एक ही धर्म एक वर्ष नियमा, काय वचन मन पति पद प्रिय, मन से थी मन को संयम कर करके और मन से पति को ध्यान कर लो और वाणी से सत प्रिय और इसका वचन बोलना और शरीर से पति के चरणों में नमस्कार करना, सेवा करना, इस बात के करने से उसको केवल पार्थिवक धर्म से ही मन की मुक्ति हो जाए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिना श्रम नारी परम गति इलहेगी, और पति व्रत धर्म शादी चल गए।